श्री गिरिराज गोवर्धन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री जमुना मैया की, श्री बरसाना धाम की, जय जय श्री राधे। श्याम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। श्री गुरुदेव श्रील प्रभुपाद श्री गोवर्धन धाम इन सबको हमारा प्रणाम है। भगवान का नाम और गुरुदेव की कृपा, संतों का संग, इसी के माध्यम से हम धाम में प्रवेश कर सकते हैं। नहीं तो धाम में प्रवेश तो ऐसे ही शरीर से हो जाएगा। हमको धाम का प्रवेश जो है वो आत्मा से करना है, द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, हृदय से प्रवेश करना है। इसलिए जितना भी समय हमें गिरिराज गोवर्धन में प्राप्त हो रहा है, अपने आप को संभाले रखिए, कहीं मन यहाँ वहाँ भटक न जाए। क्योंकि गिरिराज की तलेटी यानी एट फुट हिल्स, तल पे, गिरिराज के तलेटी पे आना, ये संतों के जीवन का लक्ष्य है। मम्मा निकट निवास देही गोवर्धन त्वम, कब हमें आप गोवर्धन जी महाराज आपके तलेटी में आश्रय देंगे, जैसे कब हमें राधा कुंड के किनारे पे निवास मिलेगा, ऐसे रूप गोस्वामी और संत लोग, उनका लक्ष्य बनाए रखा उन्होंने कि वी हैव टू रीच द एसोसिएशन ऑफ द बैंक ऑफ राधा कुंड, या तो गोवर्धन के तल के आश्रय में चले जाएं। जीवन भर साधना करते हैं उसके लिए, वहाँ पहुँचने के लिए। तो चाहे वो परमानेंटली रह रहे हैं कुछ लोग, या कुछ लोग कुछ समय के लिए आ रहे हैं, या कुछ लोग कुछ यात्रा के लिए आ रहे हैं, वो भी गोवर्धन के तलेटी का वासी है। जैसे आप अभी बैठे हो, आप भी गोवर्धन का ही वास कर रहे हो, लेकिन कुछ क्षणों के लिए, कुछ घंटों के लिए कर रहे हो। ये बहुत ही मूल्यवान चीज़ है, वेरी वेरी पावरफुल एंड वेरी वेरी वैल्यूएबल। हमारे जीवन में कई मूल्यवान चीज़ें आती हैं, जैसे गुरुदेव आते हैं हमारे जीवन में, उनका अनुग्रह आता है, उनके द्वारा दिया हुआ मंत्र आता है, संतों का संग हमारे लिए बहुत अमूल्य है, भगवान का प्रसाद बहुत अमूल्य है, चरणामृत बहुत अमूल्य है, भगवान के प्रसादी माला बहुत अमूल्य है, ऐसे बहुत अमूल्य चीज़ें हैं। लेकिन उनमें से भी कुछ अधिक अधिक मूल्यवान चीज़ें होती हैं, वो है श्री वृंदावन का वास, श्री गोवर्धन का वास, जमुना किनारे वास, ब्रज रज का संग, ब्रजवासियों की सेवा। हम लोग इतने भाग्यवान हैं कि हमको इन सभी चीज़ों का लाभ हुआ है, इज इट नॉट ट्रू? ऐसे कोई मूल्यवान वस्तु है, दिव्य वस्तु है, आध्यात्मिक वस्तु है जो हमको नहीं मिली है? बताओ, कितना भाग्य है हमारा, और इतने भाग्य को प्राप्त करने के बाद में कितना कृतज्ञ हमको होना चाहिए, हाउ मच ग्रेटफुल वी शुड बी। ये जीवन की परम 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 प्राप्ति है ये, और हमको ऐसे मुझे तो लगता नहीं मैंने कहीं तपस्या किया होगा उसके लिए 12 साल। कोई तपस्या नहीं किया है, ऐसे ही कृपा है सब। हमारे गिरिराज प्रभु उस दिन बता रहे थे, क्योंकि हमने मुरलीधर प्रभु जी को पूछा कि कितने मार्क मिले हमको उस यज्ञ में, तो गिरिराज प्रभु बोले कि 34 मार्क मिले और 2 ग्रेस मिले। लेकिन बाद में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई, उन्होंने कहा हमारा सारा जीवन ग्रेस मार्क ही है, एवरीथिंग इज ग्रेस ओनली, हमारा कुछ है ही नहीं उसके अंदर, 34 क्या 0.1 भी नहीं है हमारा, सब कुछ कृपा है। हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास हमको 0.0001 तक भी नहीं पहुंचाता है। वो अपना प्रयास पूरा लगाएंगे ना, समर्पण भी करेंगे, तो वो उतना भी नहीं बनता है उससे। हम कितने छोटे हैं और हमारा क्या प्रयास है, हमारी क्या भावना है, लेकिन ग्रेस जो है, कृपा जो है ना, वो शक्तिशाली है, वो मिस्टर नथिंग को 100% बना सकती है इमीजिएटली। इतनी कृपा हमको इस जीवन में मिली है, लेकिन हो सकता है हम उतने कृतज्ञ नहीं होंगे, या उतनी जानकारी रखते नहीं होंगे कि कितनी महान कृपा मिली है हमको। उसको रियलाइज करना भी एक भक्ति मार्ग का स्टेप है, हाँ, माइलस्टोन है। हाउ लकी एंड हाउ फॉर्चुनेट वी आर। हर समय जो ये कृतज्ञ भाव और भाग्य का भाव मन में रखता है, वो व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी भगवान की भक्ति में प्रगति कर सकता है। तो आइए आज का दिन कृतज्ञता के भाव में बिताएं। हाँ, देखिए, एक गोवर्धन शिला लाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ा, यहाँ से बम्बई ले जाने के लिए। यहाँ तो अनंत शिलाएं हैं, साक्षात गोवर्धन पर्वत है यहाँ पर, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह गोवर्धन शिलाएं। देखो, गौर से देखेंगे तो उनमें आपको कई लीलाएं नजर आएंगी भगवान की, क्योंकि ग्वाल बाल है ना, वो उसमें लीलाएं बनाते थे लीला में अपने। तो ये सब दिव्य बातें, वी आर नॉट रियलाइजिंग कि हम लोग किसके द्वारा घिरे हुए हैं। वट थिंग्स आर नो कवरिंग अस, एनवेलपिंग अस, यू डोंट नो। सो इन सब का भाव हमेशा बनाए रखना, ये बहुत आनंदमय भाव है, क्योंकि जब हम कृतज्ञ हो जाते हैं ना तो बड़ा आनंद आता है हृदय में, सब चिंताएं दूर चली जाती हैं, सब परेशानियां भाग जाती हैं। जब व्यक्ति कृतज्ञ होता है उसको कोई चिंता नहीं सताती है, कोई परेशानी उसको छू नहीं सकती है, परेशानी आती रहती है लेकिन उनको छूती नहीं है वो। कृतज्ञता ऐसा एक सिचुएशन है, ऐसा एक वातावरण है आत्मा का जो हर कष्ट से जीव को मिटा सकता है। सो पावरफुल ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड से भगवान भी आकर्षित हो जाते हैं, अनंत दुर्गुण भी हमारे अंदर होंगे ना, एक कृतज्ञता होगी ना, सब दुर्गुण भगवान दुर्लक्ष कर लेते हैं, उसी पर ध्यान देते हैं। भगवान का नाम हमें प्राप्त है, संतों का संग प्राप्त है, उसमें से भी हमारा एक भाग्य है कि भक्त भी कई प्रकार के होते हैं। रूप गोस्वामी बताते हैं कि ऐसे भक्तों का संग नहीं करना चाहिए जो धन और काम वासना के पीछे लिप्त हैं। वो क्या कहते हैं, आपको असत संग त्याग छोड़ना चाहिए और भक्तों में से उन भक्तों का त्याग संग त्याग करना चाहिए जो काम और धन के पीछे हैं। हमारा भाग्य ऐसा है कि हमको ऐसे भक्त मिले जो बहुत सिंसियर हैं, बहुत सरल हृदयी है, उनके मन में कोई अन्य अभिलाषा नहीं है, ऐसे भक्तों का संग मिला है हमको। कितने लोग हैं हमारे संग में ऐसे जिनके संग में हम लोग अपने आप को धन्य मानते हैं। हम काम भी करते हैं तो ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं उपजीविका के लिए, जो निरपेक्ष लोग हैं, जो स्वार्थी नहीं हैं, लोभी नहीं हैं, हाँ स्वार्थ के लिए काम नहीं करते हैं। ऐसे हर तरफ से हम लोग भाग्यवान हैं, इसलिए ऐसा संग मिला है। परम पूज्य रमेश बाबा जी महाराज बताते थे 86 में जब हम पहली बार गए थे ना, पहली बार पहुंचे थे हाँ उधर बरसाने में, तो तब राधानंद महाराज जी हमारे साथ थे, कुछ 22-30 लोग थे। उन्होंने बहुत बताया हमको कि ये विदेशी हैं और हमारे यहाँ आए थे और ऐसे वैसे, तो लोगों को लगा कि ऐसा क्यों बता रहे हैं हमको, वी आर विथ हिम फॉर 8 ईयर्स। तो उन्होंने बताया कि हो सकता है आपको लगेगा ये विदेशी हैं, तो आप कहीं गलत फहमी ना कर बैठो। फिर उन्होंने श्लोक बताया, अहो बतस्य गरियान हाँ नाम तुभ्यम, कि जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है और भगवान को शरणागत हो जाता है उसकी जाति पाति देश देश सब खत्म हो जाता है भगवान के लिए। तो आपको ऐसा संग मिला है तो उसको आप ऐसा क्या कहते हैं इसको, कम नहीं, मतलब मराठी बोलते ना कमी निकाल एक तुम इतना, मतलब डोंट मिनिमाइज इट, डोंट अंडर इवेल्यूएट इट, अंडर एस्टिमेट इट, इसके परे जाकर हमको उनका समझदारी होनी चाहिए उसके बारे में। तो ये सब भावनाएं जो है ना वो संतों के संग में प्राप्त होती है। तो हम लोग बोलते हैं ये विदेशी गुरु हैं, ये देशी गुरु हैं, हमको पहले बताया गया था आप विदेशी गुरु के पीछे क्यों भागते हो, हमारे देश में कितने गुरु हैं। हमारे पिताजी ने मैं ये बताया था कि हमारे कास्ट के गुरु क्यों नहीं करते आप, वो इस्कॉन में जाके विदेशी गुरु क्यों चाहिए आपको। तो ये उसको क्या कहते हैं, नारकीय बुद्धि कहते हैं, देहात्म बुद्धि। जब गुरु को हम लोग शरीर के द्वारा या किसी के द्वारा समझते हैं तो वो नरक में निवास करते हैं, अभी भी कर रहे हैं बाद में भी करेंगे। तो इस तरह से इस दृष्टि से हमें सर्वोच्च चीज, सर्वोच्च वस्तुएं हर समय प्राप्त हो गई है। और वैसा ही ये गोवर्धन का वास है, ये गोवर्धन जी महाराज जो हैं वो भक्ति को देने वाले हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों को सर्वश्रेष्ठ भक्त मानते थे, वो स्वयं इतने कठोर सन्यासी थे कि स्त्रियों के द्वारा यूज किया हुआ जूता भी देखते नहीं थे, वो इतने कठोर सन्यासी थे, वो व्रत उनका इतना कठोर था। स्त्री वो छोटा हरिदास ने एक बार एक बुड्ढी जिसके सुर्खियां चेहरे पर बहुत धारी सफेद बाल ऐसे एकदम बहुत ही बुड्ढी औरत के पास 2-3 बार 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 भिक्षा मांगने गए तो उसको अपने संग से निकाल दिया उन्होंने, क्योंकि वो भैया अच्छा भिक्षा देती है, तो इसके एक बार दो बार तीन बार उसके पास ही गए तो उसको निष्कासित कर दिया पूरा। तो लीला लीला है उनके समझाने के लिए कि सन्यास वृत्ति कैसे कठोर होनी चाहिए। वो कठोर सन्यासी उन गोपियों का नाम जप करते थे, अपने विद्यार्थी दशा में, जब वो टीचर थे व्याकरण के, तो उस समय वो ललिता गोपी करके नाम करते थे। तो उनके शिष्य बोलते, क्या आप, तभी सन्यासी नहीं थे वो, तभी तो सन्यासी नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके शिष्य बोलते थे कि क्या आप लड़कियों का नाम लेते हो, कृष्ण का नाम लेना चाहिए। तो वो भाव में थे, डंडा लेके भाग गए उनको मारने के लिए, फिर सन्यास लिया उन्होंने। लेकिन सन्यास लेने के बाद भी गोपियों को सर आँखों पर रखते थे, सर्वोच्च भक्त के रूप में, जो स्त्रियाँ थी है ना, लेकिन सर्वोच्च रूप में उनका आदर करते थे वो। और वैसे भी गोपियाँ उनका त्याग, उनकी भक्ति, उनका समर्पण, उनका कृष्ण प्रेम, उनकी एकाग्रता, पूर्ण समर्पण, और किसी का अभी तक शास्त्र में वर्णन नहीं उसका। सब संत, सब संप्रदाय, सब शास्त्र गोपियों की सराहना करते हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ भक्त थे भगवान के। वो गोपियाँ जो है वो गिरिराज गोवर्धन को हरिदास वर्य करके पुकारती हैं। कोई भी किसी को बोलेगा आप महान हो, तो वो महान नहीं हो जाता है। महान कहने वाला व्यक्ति कौन है, उस पे ऊपर जिसको महान कह रहा है उसकी वैल्यू हो जाती है ना। तो सर्वश्रेष्ठ भक्त जो भक्त की भगवान की है, वो गिरिराज गोवर्धन को हरिदास वर्य करके पुकारती है, सुखदेव जी भागवत में बताते। तो हरिदास वर्य श्री गिरिराज के चरणों में हम आए हैं, और जो हरिदास वर्य होते हैं वो हरि की भक्ति भी दे सकते हैं। तो गोपियाँ कहती हैं कि आप बड़े भाग्यवान हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे जमुना जी है, ऐसे कुछ कुछ व्यक्ति हैं जिनको भगवान के पांचों रसों का दर्शन एक साथ में हुआ है। ग्वाल बाल है वो केवल साक्ष्य रस का अनुभव करते हैं, कभी कभी मातृत्व का मतलब वात्सल्य का अनुभव करते हैं माता पिता के साथ, लेकिन अधिकतर साक्ष्य रस का ही अनुभव करते हैं। लेकिन सभी लोग रसों का दर्शन किसी एक व्यक्ति को नहीं होता है, लेकिन गिरिराज जी सभी रसों का दर्शन करते हैं। रासलीला भी देखते हैं, साक्ष्य भी देखते हैं, गौचारण भी देखते हैं, शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य, माधुर्य सब देखते हैं। जमुना जी भी ऐसी सब रसों का अवलोकन करती हैं। तो इसलिए ये महान जीव है। जैसे ब्राह्मण बलराम जी हैं, बलराम जी भी स्वयं पांचों रसों में भगवान की सेवा करते हैं। तो विशेष है ना, मतलब विशेष में से अति विशेष व्यक्ति हैं सभी है। और गोवर्धन जी का ऐसा पोजीशन है कि श्री वृंदावन जब कहते हैं हम श्री वृंदावन, तो उसके अंदर जमुना और गोवर्धन सम्मिलित है। यू कैन नॉट थिंक ऑफ वृंदावन विदाउट जमुना एंड गोवर्धन। जब गोवर्धन जमुना नहीं रहेंगे तो वृंदावन भी नहीं रहेगा। ऐसा अविभाज्य संघ है उनका। जब राधा रानी ने बोला कि हम नहीं आएंगे नीचे, लेकिन आपका संग नहीं होगा तो भी हम परेशान हो जाएंगे, तो भगवान ने कहा हम जानते हैं कि आप श्री वृंदावन के बिना नहीं रह सकते। बोले वो बोले कि हम वृंदावन यमुना और गोवर्धन जहाँ नहीं रहेंगे वहाँ नहीं रहेंगे। भगवान ने कहा ये जानते हुए मैंने पहले ही 84 कोस का गौलोक वृंदावन का हिस्सा गोवर्धन और यमुना के साथ पृथ्वी पर भेज दिया है, इसको भौम वृंदावन कहते हैं, तो मैं आऊँगी। फिर भी और एक कंडीशन डाला, पहले आपको देखूंगी। किसी को नहीं देखूंगी, किसी को नहीं सुनूंगी, किसी को स्पर्श नहीं करूंगी, किसी का गंध नहीं लूंगी, केवल आपका सबसे पहले, फिर आंखें खोलूंगी। तो ये सब स्पेशल पर्सनालिटीज है ना। तो ऐसे गोवर्धन है हमारे, अविभाज्य अंग है। जब तक गोवर्धन है तब वृंदावन है। वृंदावन तो हमेशा रहेगा, लेकिन हमारी नजरों से ओझल हो जाएगा वो, अप्रकट हो जाएगा। आज हमारे नजरों के सामने है, लोग कितने भाग्यवान जीव है। अगर हम 10,000 साल के बाद में दोबारा आते हैं ना, तो गोवर्धन नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि उनके जन्म से 1486 से 10,000 साल तक कलयुग का स्वर्ण युग होगा, गोल्डन पीरियड। इस पीरियड के अंदर जो भगवान के नाम का सहारा लेगा वो भगवत धाम चला जाएगा। और जो सहारा लेने वाला व्यक्ति है उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि 4-5 जन्म में कर लेंगे। जल्दी क्या है इतनी। ऐसे गोवर्धन जी है अभी 10,000 साल का बहुत समय है। नो हरी नहीं, हरी है हमको, क्योंकि दोबारा अभी आएंगे तो क्या स्थिति होगी यहाँ पर पता नहीं, आई डोंट नो। अभी इतना हॉरिबल है, आगे क्या होगा, इतना भ्रष्ट समाज हो रहा है अभी, तो हम लोग को सोचना भी नहीं चाहिए कि आगे आना है। अभी आए हो, भक्तों का संग मिला है, अभी काम निपटा लो और चले जाओ यहाँ से, सब लोग उधर मिलो एक साथ में। आज मंगल आरती में गए थे तो हमने श्यामलाल प्रभु के कान में बताया, वो जी ये सब लोग गोलोक में मिलेंगे आपको, जितने भी मंगल आरती में आते हैं रोज धामवासी। तो 10,000 साल के समय में जमुना जी धीरे 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 कम 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 होती जाएगी। और आपको पता ही है गिरिराज जी को पुलस्त्य मुनि का शाप प्राप्त है, पुलस्त्य मुनि ना एक सिसम यानी तिल के दाने के आकार से वो जमीन में धस जाएंगे, ऐसा उनको शाप भी है। 10,000 साल के बाद में ना जमुना रहेगी और गिरिराज जी पूरे जमीन में धस जाएंगे और वृंदावन धाम भी लुप्त हो जाएगा। और वैसे भी अभी गौरांग महाप्रभु का समय है तो गौरांग महाप्रभु ने कहा है कि धीरे धीरे श्री वृंदावन धाम हमारे नज़रों से ओझल हो जाएगा और नवद्वीप धाम प्रकट हो जाएगा अधिक अधिक गौरव के साथ में। तो हम लोग का भाग्य क्या है कि हमारे जीवन में जब हमारे मति सही जगह पर है, बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई है अभी तक, शरीर भी ठीक है ओके है, तब ये हमको जन्म मिला है और तब ये दर्शन भी हो रहे हैं गिरिराज गोवर्धन के। मैं आपको सच सच बताता हूँ, 30 साल पहले गोवर्धन थोड़े बड़े थे इससे, मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा हूँ हकीकत कह रहा हूँ। 30 साल में तो एक एक दिन में तो रस्ते ना, वो 30 साल में कितने दिन होते हैं, उतने तिल के साइज ढस गए तो अभी कम नज़र आते हैं वो। और आप अभी अगर बूढ़े होकर 30 साल के बाद आएंगे ना तो और कम दिखेंगे आप। तो इसलिए ये जो गौरव है गोब्रज भूमि का, ये आपको आज मिल रहा है देखने के लिए, नज़रों में संभालो उसको, यहाँ वहाँ मत देखो। शिंगाड़े का ठेला कहाँ लगाए, गन्ने का जूस कहाँ लगाए, वो मत देखना, गिरिराज को देखना। लुक एट गिरिराज, वो आपको आशीर्वाद देने के लिए खड़े हैं। हाँ कैसे खड़े हैं, 24 आवर दर्शन है उनका, कोई शयन नहीं है, कोई उत्थापन नहीं है, दिन भर खड़े हैं, सर्दी में खड़े हैं, गर्मी में खड़े हैं, आपको दर्शन दे रहे। कभी भी आओ, दर्शन बंद नहीं होता है। ऐसे कोई ड्यूटी होती क्या बताऊँ, सो मर्सीफुल। हम लोग रात को अपने कमरे में बंद करके हीटर लगा के कंबल ओढ़ के सो जाते हैं, और गिरिराज जी पे कोई कंबल नहीं होता है, आराम से खड़े हैं, रात में परिक्रमा लगा लो फिर दर्शन देते हैं आपको, इतनी कृपा है। तो ये भगवान के परम भक्त हैं और ये इनका जन्म जो है ना, भगवान ने गौलोक धाम का निर्माण किया और अपने बाह्य अंग से राधा रानी को निर्माण किया, राधा रानी ने गोपियों को जन्म दिया, निर्माण किया, सखा निर्माण हुए। तो राधा रानी ने कहा कि मुझे अभी ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर हम और आप एकांत संग कर सकते हैं, ओनली यू एंड मी। तो उसी समय जब वो कह रही थी तब भगवान के छाती से एक तेज निकला सबके सामने, ऐसा वो तेज जाकर वो गोलोक की भूमि पर स्थिर हो गया और तत्क्षण उस तेज से एक पर्वत उत्पन्न हो गया और वो करोड़ों करोड़ों मील तक आकाश में फैल रहा था, आकाश में, और उसका विस्तार भी करोड़ों करोड़ों मील का हो रहा था। तो फिर भगवान ने उसको रोका कि बस अभी पूरा गोलोक व्याप्त कर लेगा, उसको रुका। बड़ा अति सुंदर तेज था उसके अंदर, तो राधा रानी बड़ी प्रसन्न हो गई और वही है श्री गोवर्धन गिरिधार गिरिराज। जड़ी बूटियां, आप जीवन की आवश्यक की जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें उनके अंदर उपस्थित हैं आज भी। तो फिर जब भगवान ने अवतार लेने का सोचा तो फिर गिरिराज जी पृथ्वी पर आए, जमुना जी भी वहां से निकली। जमुना जी ऐसे रथ में बैठकर निकली इसके 1,00,000 पहिया थे, 100,000 व्हील्स, उसमें अनेक सोने की रत्न जड़ित घंटाएं लगी हुई थी और हजारों लाखों सखियां थी उसके अंदर। उनको लेकर जमुना जी निकली है गोलोक से, विरजा को पार करते हुए फिर ब्रह्मांड में प्रवेश किया उन्होंने, फिर पृथ्वी पर आई है। पृथ्वी पर आई है तो फिर कालिंद पर्वत की पुत्री के रूप में आई है, सूर्य की पुत्री के रूप में आई है। वैसे ही गोवर्धन जी द्रोणाचल पर्वत हिमालय के पुत्र के रूप में आए हैं, वो तो जैसे भगवान भी देवकी वसुदेव के रूप पुत्र के रूप में आए हैं, वो भौतिक दुनिया में आने का उनका एक मार्ग है, लीला है उनकी। तो वैसे गिरिराज जी आए, फिर यथावकाश पुलस्त्य मुनि आए और उन्होंने उनको यहाँ पर लाया, यहीं पर बस गए वो। फिर पुलस्त्य मुनि को उनको काशी लेके जाना था, लेकिन काशी जाने के लिए इनकार कर दिया गोवर्धन ने, क्योंकि उनका जीवन का लक्ष्य जो है वो भगवान के धाम में आने का था। और पुलत से और जो गोवर्धन की लीला है उसमें हमको दिखाई पड़ता है कि योग बल तपोबल भक्ति बल के सामने तुच्छ है। योग बल तपोबल वाला व्यक्ति भी उस क्षण तपोबल खो बैठा, इंद्रिय दमन भी खो बैठा, वो लघु शंका पर नियंत्रण नहीं कर पाया, इतना वेग आया उसको। कारण क्या था उसका कि भक्ति बल जो गोवर्धन का था वो इतना प्रभावी था कि इनका योग बल फेल हो गया, उधर फिर चले गए, वो कुछ नहीं कर सके। जिसको गेंद की तरह आराम से उठाकर लेकर आए थे उसको अपना पूरा योग बल लगा के बाद में उठा नहीं सके। वो गोवर्धन की इच्छा थी, जब उनकी इच्छा थी तो गेंद की तरह हल्के हो गए, रुई की तरह, जब उनकी इच्छा नहीं थी तो बैठ गए उधर, वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं भगवान का, भगवान आएंगे सेवा करेंगे उनकी। फिर हनुमान जी आए सेतु बंधन के समय, उनको उठाया, लेकिन उठाया तो वाला अनाउंसमेंट हो गया आकाशवाणी, सेतु बंध पूरा हो गया, तो हनुमान जी ने वापस नीचे रखा उनको। तो इतने रोए गोवर्धन जी, इतने रोए। आप जान सकते क्या, सत्ययुग में आए वो यहाँ पर विराजमान होने के लिए। सत्ययुग कितना होता है, 17,28,000 साल का होता है, फिर 12,96,000 का त्रेता युग होता है, उसके अंत में राम भगवान लीला कर रहे हैं। तो कितने हो गए साल, 30-35 साल तो बता, 30-35 लाख साल की बात कर रहा हूँ, उतने साल तो ऑलरेडी बीत गए। इतना वेट करने के बाद में एक मौका मिला, वो भी ख़त्म हो गया, तो बड़े दुखी हो गए वो। और हनुमान जैसे महान भक्त जो है भगवान के, भक्त शिरोमणि, वो भी उनका रुदन देखकर परेशान हो गए, बोले क्या भक्त है, क्या रो रहा है। तो उनको आश्चर्य हुआ, भगवान को जाके पूरी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मैं पर्वत उठाया था आपके लिए, लेकिन आकाशवाणी हुई तो रख दिया, तो इतना रोया, बोले मेरा भक्त है गोवर्धन। तो उन्हें संदेश भेजा उनको। तब 7 कोस की जगह बाकी थी ब्रिज में, है ना, ये ब्रजवासी पंच है ये कथा का, हमारा नहीं है, ब्रजवासी ने बताया। 7 कोस की जगह थी, 7 कोस का पर्वत था, वो फिट होने वाला था उसके अंदर एक ही प्रयत्न में, लेकिन नहीं हो पाया। तो भगवान ने कहा मैं जब अगले अवतार में आऊंगा तो 7 दिन 7 रात आपको सर पर धारण करूंगा। कैसा जगह दिया उनको, अपने शीश पर धारण किया, अपने ऊपर स्थान दिया उसको, खुद उठाकर ऐसा गौरव किया भगवान ने। बाकी लीला तो है, इंद्र ने वर्षा किया, सबको सब बचाया, वो सब है, लेकिन गिरिराज गोवर्धन के बीच में क्या है, आदान प्रदान क्या हो रहा है, इतनी भयंकर वर्षा हो रही है प्रलय काल की, हाँ खंभा जैसा एक एक बूंद है, और ऐसे अनंत बूंद गिन रहे, समर तक बादल अपनी पूरी शक्ति प्रलय काल के लगाकर डिस्ट्रॉय करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उल्टे गिरिराज को जरा सा भी कष्ट नहीं हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना सा भी कष्ट नहीं हुआ। गिरिराज के अंदर जितने गुफा में शेर वेर थे ना, सब भाग गए डर के मारे, लेकिन गिरिराज को इतना सा भी कष्ट नहीं हुआ। ऊपर से इतना प्रफुल्लित आनंद का अनुभव कर रहे थे वो, क्योंकि भगवान के उंगली के अग्रभाग का स्पर्श उनको प्राप्त था, उसमें से सारी शक्ति, दिव्य शक्ति, आनंद उनको प्राप्त हो रहा था, और उसके वजह से गिरिराज के ऊपर के जितने पेड़, जितनी वेलियां, जितने फूल फल, तो एक पंकुड़ी भी, एक पत्ता भी इंद्र के समर तक बादल गिरा नहीं सके उसको। नीचे लीलाएं अलग हो रही है, पूर्व लीला हो रही है। तो ये भक्ति का रहस्य है, जब हम भगवान को शरणागत होते हैं ना भगवान की सेवा में, तो कितना भी बड़ा आतंक होगा आपके जीवन में, वो आपको नहीं छुएगा, इट विल नॉट टच यू। कितने बड़े संकट आएंगे, कितनी परीक्षाएं होंगी, लेकिन अगर जीव भगवान से समर्पित है तो उसको उसका परिणाम नहीं होगा। संकट आएगा और जाएगा, हाँ दिखाई पड़ेगा कि संकट आ रहा है, और आपको लगेगा बाप रे कितना संकट है इनके लिए, लेकिन शरणागति ऐसी एक, ऐसा एक टीका है, वैक्सीन है, कि शरणागत भक्त को वो संकट भयंकर आने के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इतना भयंकर प्रलय का संकट आया, और सब आघात तो उस पर हो रहा था, बाकी सब तो अंदर आ गए थे उसके, सारा आघात तो वही सहन कर रहे थे, और वो इंद्र भी जोर जोर से इसको गिराने का कोशिश कर रहे थे कि हाथ से इसको गिरा देंगे, सबको बहा दूंगा मैं, सारा आघात खुद सहन कर रहे हैं भक्तों के लिए। देखो भक्तों को रक्षा करें और खुद सारा आघात सहन कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने उनको जरा सा भी कष्ट होने नहीं दिया, उल्टा आनंद दिया, कष्ट के बाद दूर रही। तो ऐसे गिरिराज भक्त हैं भगवान के। ये नहीं कह रहे, अरे आप लोग मजा कर रहे हो नीचे, मुझे तो ऊपर खड़ा करके रखा है। एक तरफ से बोल रहे हो कि छत्र बना के रखा है, आदर आदर कर रहे हो मेरा, सम्मान कर रहे हो, लेकिन पता है क्या मेरा क्या हो रहा है उधर ऊपर? ऐसा नहीं बोल रहे हो। इट्स एंजॉइंग, इट्स हैप्पी। 700 दिन 700 रात, 7000 दिन और 7000 रात भी खड़े होते ना तो भी ऐसा ही रहता, आराम से, नीचे वाले भी ऊपर वाले भी आराम से हरी बोल चलते रहने दो। ऐसा संग किसको मिलेगा? हाँ, सारे भक्त एक साथ में हैं, माधुरी वाले भी है, वात्सल्य वाले भी है, दास्य वाले भी है, साख्य वाले भी है, शांत वाले भी है, ऐसे वाले भी है, वैसे वाले भी है, सारे लोग सब खड़े हैं। और क्या चाहिए जीवन में? भक्तों का संग हो, भगवान हो, भगवान का दर्शन हो, भगवान की सेवा हो। और जीवन में क्या चाहिए, क्या ले जाओगे साथ में? यही हमारे साथ जाएगा। ऐसा परफेक्ट सिचुएशन है तो कोई किसी को इच्छा नहीं थी कि ये सिलसिला समाप्त हो जाए, लेकिन समाप्त क्यों हो गया? वो टैंकर खाली हो गया उनका। संवर तक बादल का टैंक खाली हो गया, परेशान हो गए वो। इंद्र भी वज्र मार मार के हरे परेशान हो गए, वो कोशिश कर रहे थे कहीं ना कहीं वज्र मार के वज्र भेद कर दूं, कहीं इनका लीला समाप्त हो जाएगा, नहीं हो गया। जब संवर तक बादल का पानी खत्म हो गया ना, तो होश में आया इंद्र, अरे बाप रे, संवर तक बादल को शक्ति को समाप्त करने वाला तो एक ही व्यक्ति है, तो भगवान है। मैं सोच रहा था कि बालक है नटखट बड़बड़ करने वाला, तो भगवान निकला। बाप रे, डर गए वो, भाग गए यहाँ से ऊपर सीधे बृहस्पति के पास। उन्होंने दोबारा नीचे भेजा, जाओ नीचे एक भक्तों का चरणों का शरण ले लो। तो जैसे इंद्र के सामने गाय क्या चीज हो सकती है, लेकिन वो गाय भी इंद्र के सामने इतनी महान है क्योंकि वो भगवान के शरण में है वो। और गाय ने ऐसा नहीं बताया, अभी आए हो, हाँ इतनी वर्षा कर रही तभी क्या हुआ था, चलो जाओ यहाँ से, मुँह नहीं दिखाना इधर, नालायक कहीं का। ऐसा नहीं बताया, तुरंत शरण दिया उनको। इमेजिन, आपके ऊपर उसने इतना जीवन जीवन मृत्यु का आतंक किया हुआ है, वो व्यक्ति बाद में आपके पास शरण लेने आया, दो चार बातें सुनाएंगे ना आप उसको, कुछ करेंगे पहले, दो चार गालियां तो देंगे नहीं, तुरंत शरण दिया। भगवान के भक्त ऐसे होते, कभी अपराध लेते ही नहीं किस चीज़ का। शरणागत हो गया ना, बस खत्म, एवरीथिंग फिनिश्ड, नम्र बन के आ गया, फॉरगेट एवरीथिंग ऑफ द पास्ट। ऐसे भक्तों का भाव होता है, तुरंत भगवान के पास ले गई। जिनको जैन भगवान ने का दर्शन, भगवान का दृष्टि मेरी ओर होना चाहिए, ऐसे लिए कितना इंद्र ने प्रयास किया था, यहाँ से वहाँ से गए थे वो, भगवान इधर देख रहे, इधर से आए तो भगवान इधर देख रहे। आई डोंट केयर हु यू आर, ऐसे व्यक्ति को भगवान ने देखा सुरभि की वजह से, सुरभि की कृपा से। तो भक्त ही भगवान के सब कुछ है, भक्त बोलेगा तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। जिसको देखने को भी तैयार नहीं थे उस पर पूरा कृपा किया भगवान ने। तो ऐसा ही गिरिराज जी का संग हमको प्राप्त है। तो ये गिरिराज जी को भगवान ने वरदान दिया था कि मैं अगले जन्म में जब आऊँगा तो आपके शीश पे धारण करूँगा और आपके इर्द गिर्द सारी मेरी अंतरंग लीलाएँ करूँगा। द मोस्ट इंटीमेट पास्ट टाइम्स आई विल परफॉर्म इन एंड अराउंड यू। तो गिरिराज भी एकदम तैयार थे, सारा चीज़ परफेक्ट। हाँ, गिरी के अंदर यानी कि पहाड़, गुफा, बैठने की जगह, सोने की जगह, सरोवर, झरने, फल फूल, जड़ी बूटियाँ, हाँ पेड़ की छाया, हर चीज़ जो चाहिए जीवन के लिए, गाय के लिए घास, हर प्रकार की व्यवस्था। हाँ, जिसको नींद आ रहे हो खड़े हो जाओ, हाँ जिसको नींद आ रहे हो खड़े हो जाओ। तो ऐसे गिरिराज जी भगवान के अंतरंग लीला के सहायक हैं, वो भगवान के लिए अंतरंग लीला के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। और ये जगह जो है ये प्रविष्ट वन कहते हैं इसको, प्रविष्ट वन, और उसके अंदर एक आगे प्रविष्ट गुफा है, अभी बंद हो गई हो वो। प्रविष्ट गुफा के अंदर जाकर भगवान ने गिरिराज को उठाया था, जमीन के अंदर जाके फिर उठाया था उसको, उसके लिए प्रवेश, प्रविष्ट गुफा। ये जगह जो है ये श्री गिरिराज परिक्रमा के 40 किलोमीटर के परिक्रमा में आता है, दीर्घ परिक्रमा जो हमारे सनातन गोस्वामी किया करते थे। और सबसे पहले भगवान की परिक्रमा, गिरिराज की परिक्रमा स्वयं भगवान ने की थी। इज आद्य प्रवर्तक ऑफ गिरिराज परिक्रमा, द फर्स्ट परिक्रमा भगवान ने स्वयं लीड की थी सब ब्रजवासियों के साथ में। तो भगवान भी कितना आदर करते हैं। और परिक्रमा करने का मतलब क्या है? परिक्रमा करने का मतलब है चरणों की सेवा करना, सर्विस टू द लोटस फीट ऑफ दैट पर्सन, जिसकी चरणों की आप परिक्रमा कर रहे हो उसके चरणों की सेवा हो रही है। तो भगवान जब परिक्रमा कर रहे हैं तो भगवान भी गिरिराज के चरणों का पूजन कर रहे हैं, है ना। तो 40 किलोमीटर की जो परिक्रमा है, दीर्घ परिक्रमा, वो हमारे सनातन गोस्वामी किया करते थे अपने उम्र के 70 वर्ष की आयु तक करते थे। फिर भगवान ने उनको बालक के रूप में आके रोका और एक शिला दे दिया अपना चरण चिन्ह के साथ कि भाई इसकी 4 परिक्रमा करो, फिर आपको और इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं, सारा फल प्राप्त हो जाएगा। फिर भी वो तैयार नहीं थे, लेकिन भगवान ने उनको बोला नहीं, तो फिर वो मान गए। फिर मानसी गंगा में उनका भजन कुटी है सनातन गोस्वामी का, चक्रेश्वर महादेव के पास, वहाँ पर वो शिला रखी और वहीं पर प्रदक्षिणा करते थे। फिर जब वो पधार गए तो धरोहर में ये शिला जीव गोस्वामी के पास पहुँच गई एज अ इनहेरिटेंस, इसलिए वो आज भी जीव गोस्वामी के मंदिर में है। तो ये विभाग जो है, भगवान आप जानते हैं कि रास करते हैं, है ना। जीव के लिए जो परमोच्च आनंद भगवान देते हैं उसको रासलीला में हम समझते हैं। रासलीला के माध्यम से भगवान जीव के लिए सर्वोच्च आनंद दिलाते हैं, टॉप मोस्ट ऑफ स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। उसमें कोई काम वासना कोई ऐसा भाव नहीं है, वो दिव्य आनंद है। तो भगवान ने सबसे पहले रास शुरू किया शरद ऋतु में, शरद ऋतु में रास शुरू किया, पूर्णिमा के दिन पहला रास किया सबसे, रात को बुला कर गोपियों को। लेकिन उसके बाद में भगवान ने वृंदावन के कण कण पर रास किया, हर एक स्थली रास स्थली है भगवान की। कुछ विशेष रास स्थलियाँ हैं, कुछ कॉमन रास स्थलियाँ हैं। जैसे कि आप कल नहीं आए थे ना, हम लोग कल ललिता कुंड में गए थे, उधर भी रास मंडल है। फिर आप गोपाल भट्ट गोस्वामी के भजन कुटी में जाएंगे, संकेत देवी के पास, उधर भी रास मंडल है। तो सब जगह भगवान ने रास किया है, लेकिन उनके शारदीय रास और वासंती रास, ये दो प्रमुख रास के प्रकार हैं। एक शरद ऋतु में होता है और एक वसंत ऋतु में होता है। अभी कौन सा ऋतु चल रहा है? वसंत ऋतु शुरू हो गया है, वसंत पंचमी के आगे वसंत ऋतु शुरू हो जाता है। बाहर आ जाती है, फल फूल निकलते हैं, फूलों की बाहर आ जाती है, सुगंध आता है वातावरण में, फल फूल जो है उनका पुकेसर श्री केसर का मिलन होता है और उनका भी पुनरुत्पादन होता है, सृष्टि को बाहर आ जाती है। वसंत ऋतु भी भगवान का भक्त है, भगवान की सेवा में अपने पूरे ऐश्वर्य के साथ में, गौरव के साथ में हाजिर हो जाता है। तो जैसे वसंत ऋतु आता है तो भगवान रास करते हैं यहाँ पर गोपियों को बुलाकर। हाँ, सब लोग अभी सावधान रहिए, अभी हम इस स्थान की कथा कर रहे हैं। हाँ, एवरीबॉडी इज रेडी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान ने यहाँ पर रास शुरू किया और उस रास में शुरुआत में केवल कंगन और पायल का म्यूजिक था, ओनली कंगन और पायल, कोई वाद्य नहीं थे उसके अंदर। वो इतना सुंदर ताल और इतना सुंदर राग और स्वर थे उसके कि आकाश में सब देवता इकट्ठा हो गए और उनको तो प्रवेश तो नहीं है इसमें, वो देख रहे हैं ऊपर से और सोच रहे हैं कि उतना कुछ सेवा की जाए। तो अपने वाद्य, अपने सर सुर ताल लेकर सब आ गए और कोशिश करने लगे उसको मिलाने का, लेकिन आखिर तक मिला नहीं पाए उस सुर को। हाँ, बोलते ना, वो बुलाते ना उसको, टिंग टिंग टिंग, विच सुर इज गोइंग ऑन, नोबडी नोज। इतना कोशिश कर रहे हैं, फिर क्या हुआ, इनका चल रहा है अपने ताल में, उनका भी चल रहा है अपने ताल में। उनको लग रहा है कि ताल मिल गया हमारा, लेकिन ताल मिला ही नहीं आखिर तक। और वो जो है ना, देवता में बहुत कैटेगरी होती है। एक नाचने वाले लोग होते हैं जो उनका लोक में सब नृत्य कला में निपुण होते हैं, एक ऐसे हैं कि वाद्य कला में निपुण होते हैं, एक गाने कला की, गंधर्व जो गाने वाली कला में निपुण होते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। गंधर्व यक्ष किन्नर किम पुरुष, ऐसे अनेक देवताओं का कैटेगरी है। वो सब जैसे बंदर कैसा है, जन्म से ही ओलंपिक्स जिम्नास्टिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट होता है ना, उसको ही डजंट गो टू जिम्नास्टिक स्कूल, वो जन्म से ही गोल्ड मेडलिस्ट है। आप गोल्ड मेडलिस्ट को लाके खड़ा करो और बोलो अभी फाइनल कॉम्पिटिशन ऑफ द गोल्ड मेडलिस्ट इज विद मंकी, तो मंकी उसको ऐसा हराएगा कि वो देखते रह जाएगा वो। वैसे ये देवता लोग जो है अपने जन्म से ही उस कला में निपुण होते हैं, वो उनके अंदर भी निपुण और निपुणतम होते हैं कुछ लोग। तो सब लोग ऊपर जमा हो गए और नृत्य करने लगे, गाने लगे, वाद्य बजाने लगे, और कुछ लोग फ्री होते ना जो इनमें से नहीं होते, वो फूल बरसाते रहते हैं। क्यों बता दें, मालूम है, बता दें, क्योंकि उधर स्वर्ग लोक में, स्वर्ग लोकों में जो भी फूल खिलते हैं ना वो मुरझाते नहीं है। इसलिए एक टेम्पटेशन है लोगों को कि स्वर्ग में जाकर एक बार घूम के आना चाहिए, थोड़ा तो लेना चाहिए आनंद, लेकिन मत जाना उधर। हाँ, क्षण पुण्य मरते लोग के विशंति, दोबारा यहीं पर आके पटकना है आपको, गिरना है, इसलिए वहाँ पर मत जाना। जाना है तो उसको उसके आगे जाना, ऐसी जगह जाना जहाँ पर वापस नहीं आना पड़ेगा। बार बार आना जाना किसको टाइम है इधर, अरे आना जाना यहाँ निरंतर, कोई नहीं परमानेंट, कर लो राम भजन अर्जेंट। अरे कर लो राम भजन अर्जेंट, आना जाना नहीं नहीं हमारे पास कुछ नहीं, हम सब सुन के आते हैं। सब उधार का सामान है हमारे पास। हम सब लोग उधार के हैं, हमारे पास क्या है, सब लोग दूसरे से सुनते हैं भक्तों से। अरे आना जाना यहाँ निरंतर, कोई नहीं परमानेंट, कर लो राम भजन अर्जेंट। तो इसलिए थोड़ा सा साइड ट्रैक किया मैंने आपको। मतलब वो फूल के चक्र में उधर मत जाना जो देवता बरसा रहे हैं, लेकिन वो फूल बरसा रहे हैं। देखो आप वाद्य गा रहे, बजा रहे हैं, गा रहे हैं, नच नृत्य कर रहे हैं, और यहाँ पर ऐसा नृत्य हो रहा है कि सब लोग आनंद विभोर हो रहे हैं, देवता भी सुनकर और गोपियाँ सब भाव विभोर हो रही है, और उनके शरीर से श्वेत जल निकलता है, आँखों से अश्रु निकलते हैं, सारे इकट्ठा होकर ये चंद्र सरोवर, ये सरोवर बन गया। नृत्य हो रहा है, अनंत करोड़ों गोपियां नाच रही हैं, सबके शरीर से जो द्रव्य निकल रहा है वो यहाँ निकल रहा है। कैसा भाव है उसका, प्रेम का जल है वो। वो हमारे पसीना जैसा नहीं है, हमारा पसपा पसीना दुर्गंधी वाला है। जब गोपियों के और भगवान के शरीर से श्वेत निकलता है तो सुगंधी होता है वो, दिव्य आनंद को देने वाला होता है, अति उत्कट अष्ट विकारों को प्राप्त कराने वाला होता है। तो वो अश्रु जो अष्ट विकारों में से एक है वो प्रकट हो रहा है यहाँ पर, स्वेद प्रकट हो रहा है। तो देवता में से जो चंद्र है ना वो एकदम यू आर रियली इंस्पायर्ड, यू नो वाओ लुक एट दिस। तो चंद्र देवता के पास कुछ अमृत रखा होता है हमेशा, उनका बहुत बड़ा लीला है, उनके पास अमृत कैसे आया, एनीवेज तो तुरंत उन्होंने अमृत डाल दिया इसके अंदर, क्योंकि वो चाहते थे कि अरे इतनी सुंदर स्थान प्रकट हो रहा है, वो अमर होना चाहिए, तो उसने अमृत डाल दिया उसके अंदर। और फिर वो चलता रहा। फिर चंद्र देवता इतनी ज़्यादा इंस्पायर हो गए कि खुद आके पिघल गए उसके अंदर, इमर्ज्ड इन दिस, मेल्टेड इन दिस वाटर, पिघल गए पूरे। इसलिए नाम पड़ा है चंद्र सरोवर। इतना सुंदर विशाल सरोवर है, इतना रमणीक है, आज भी नेत्रों के लिए इतना आनंददायी है, तब कैसा होगा, कितनी सुगंध और कितना आनंद देने वाला है चंद्र सरोवर। तैसा चंद्र सरोवर का इतिहास है, और भक्तों का और ब्रजवासियों का हमें हमेशा धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने इतना बंदा अच्छा बनाकर नहीं रखा होगा जीर्णोद्धार, कोई ना कोई व्यक्ति ने लीड किया होगा ना उसको, बनाने के लिए, समझाने के लिए, और प्लान के लिए, और खर्चे के लिए। तो हम लोग अभी आते हैं ऐसे टपकते हैं यहाँ पर, फ्री ऑफ चार्ज बैठ गए, कोई एंट्री फी नहीं है, हाँ आनंद ले रहे हैं। देखो जल भी कितना स्वच्छ है, अब देखो सो क्लियर, क्रिस्टल क्लियर वाटर, अष्टकोणी कुंड है, कहीं दिशा में जाओ आपको आनंद आएगा देखने के लिए। और ये कम से कम 15 साल से देख रहा हूँ इसी स्थिति में है, बहुत सुंदर, मतलब जल को साफ करते बीच बीच में। तैसे विशाल चंद्र सरोवर के सानिध्य में हम आए हैं। और जब ये रासलीला हो रही थी तो बलराम जी को खबर मिली कि अरे रासलीला हो रही है, तो भागवा के आए, लेकिन उनको पता है कि अगर मैं सामने आया तो बड़ा भाई होने के नाते कृष्ण संकोच से अपना रासलीला बंद कर देगा, वो भी एटिकेट है ना उनका, यू कैन एंजॉय विद हिज गर्लफ्रेंड्स व्हेन हिज एल्डर ब्रदर इज देयर। तो बलराम जी ने सोचा कि मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तो वो ना गोवर्धन पे आ गए, गोवर्धन पे एक जगह है गोविंद कुंड के आगे आप जाएंगे ना तो एक दाहिने हाथ में एक गुलाबी मंदिर आता है, वो पहाड़ पर ही है, वो छोटा सा मंदिर है लेकिन पहाड़ के ऊपर है वो। तो बलराम जी वहाँ पर आ गए और वहाँ से इस जगह ऐसे स्ट्रेट दर्शन है उसका, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो स्ट्रेट दर्शन इस जगह का वहाँ से हो रहा है। तो फिर वो खड़े भी नहीं हो गए, खड़े हुए दिखाई पड़ूंगा, इसलिए वो दंडवत के पोजीशन में आ गए और दंडवत के पोजीशन में दर्शन कर रहे हैं रासलीला का। दंडवत की स्थिति में वो भाव विभोर होकर स्तंभ हो गए। वो एक अष्टविकार में एक स्तंभ होता है, स्तंभ यानी कि यू गेट स्टंड, यू बिकम लाइक रॉक, लकड़ी की तरह बन जाते हैं दंडवत। तो वहां पर वो ऐसे स्तंभ हो गए, वो दर्शन करते हुए अष्टविकार का अनुभव किया और स्तंभित हो गए वो वहां पर। तो उस स्थिति में उनका वहां दर्शन है। तो स्तंभित होने के लिए उस जिस पोजीशन में गए तो मुकुट उतार दिया उन्होंने, मुकुट लेके कैसे संबंध दंडवत हो जाएगा, मुकुट उतार दिया तो जिस शिला पे मुकुट रखा वो शिला भी पिघल गई और उस शिला पर उनके मुकुट का चिन्ह निशान उत्पन्न हो गया, उसको कहते हैं मुकुट शिला। वो मुकुट शिला भी उस मंदिर में है और बलराम जी का ढोक यानी ढोक नहीं दंडवत स्थिति में वहाँ पर दर्शन है। तो क्या नाम है उनका, ढोका दाऊ जी, वहाँ दर्शन है उसका। ये सब ब्रज जो है ना ये भाव की बातें हैं। अब आप ऐसे गए देखेंगे अरे कोई तो सोया हुआ है, क्या है इधर देखना, क्या है उसके अंदर सोए आदमी का दर्शन क्या करना है। लेकिन जब पता चलेगा ये सोए हुए नहीं है, स्तंभित भाव में बलराम जी विराजमान है वहाँ पर स्वयं, ये इनका मुकुट है, ये उसकी पीछे लीला है, तुरंत दंडवत करेंगे, है ना। जब तक भाव नहीं ग्रहण करते हम लोग तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा हमको लाइफ में। जैसे वो प्रभु जी आए बताए अभी जी गोवर्धन शिला है संभालना, अब आगे बैठ गए ठीक है, तो आपको अगर नॉलेज दिया जाएगा कि क्या है यहाँ पर आप सतर्क हो सकते हो। तो नॉलेज बहुत ज़रूरी है और नॉलेज संग भक्तों के संग में मिलता है। और एक श्लोक मैंने चार दिन के पहले पढ़ा, उसमें कहा गया है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए थोड़ी बहुत तपस्या करनी पड़ती है, विदाउट डूइंग एनी तपस्या नॉलेज प्राप्त नहीं होता है। नॉलेज मिलने की जो प्रक्रिया है वो आर्म चेयर प्रक्रिया नहीं है, आराम से बैठे हैं कोच पे और ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है वो। उसके लिए कुछ ना कुछ व्रत तपस्या होनी चाहिए। भगवान भी सर मुंडवा कर सांदीपनी मुनि के आश्रम में जंगल में जाकर लकड़ी तोड़ देते हैं तब ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु के शरण में जाकर उनकी मिनियल तुच्छ सेवा करनी पड़ती है, शरीर को खुला कष्ट देना पड़ता है, थोड़ी सी असुविधा देनी पड़ती है, तब जाकर जो जीवन के लिए आवश्यक ज्ञान है वो प्राप्त हो जाता है। एनीवेज तो आपके सामने चंद्र सरोवर है और एक सुंदर बात है कि जब वो रासलीला हो रही थी ना तो सब लोग अपने अपने वाद्य बजा रहे थे, तो इंद्र जो इतने इंस्पायर हो गए वो नीचे आ गए पृथ्वी पर और नगाड़ा बजाने लगे जोर जोर से, नगाड़ा साथ देने के लिए। वो नगाड़ा भी इधर गौशाला में है, वो आप हाँ वो जो रास्ता में आप आएंगे ना वहाँ वो उतरेंगे थोड़ा आगे जाके, और वो गौशाला में बड़ी शिला है, वो बाजनी शिला कहते हैं उसको, बाजनी शिला जो इंद्र ने बजाई थी। और इसी दिव्य स्थल के सानिध्य में सूरदास जी ने यहाँ पर निवास किया है, जो फेमस भक्त है भगवान के सूरदास जी, उन्होंने यहाँ पर 70 साल तक निवास किया है अपने सारे पदों का। हाँ मैं एक बार मार्केट में गया था जस्ट पूछने के लिए क्या है, तो बोले 6 इतने बड़े खंड हैं उनके रचना के, जो उन्होंने कविता लिखी है उसके 6 खंड है। जैसे महाभारत के होते हैं ना 6 खंड, वैसे उनके पद के 6 खंड है, इतना विशाल रचना उन्होंने किया हुआ है। और वो क्या है उनका रहस्य कि जब भगवान थे यहाँ पर तो उन्होंने अपने साख्य भाव में बहुत लीला किया भक्तों के साथ, लेकिन कहते हैं कि उनका साख्य लीला का दिल नहीं भरा अंतर्दान होने के बाद भी, तो वो श्रीनाथ जी के रूप में दोबारा प्रकट हुए। श्रीनाथ जी की प्रकट लीला उन्हें दोबारा उस लिए की कि उनको दोबारा अपने सखाओं के साथ में लीला करना था। तो माधवेंद्रपुरी जी ने प्रकट तो उनको किया और उसके बाद में ये अष्ट छाप जन्म लिए, उसमें सूर जो है वो सूर शिरोमणि है, उसको सूर सागर की उपमा दी गई। वो सब वल्लभाचार्य के शिष्य थे, 8 लोग थे, 8, हर एक को एक एक पदवी दी गई है। उसमें सूर जो हैं सूरदास जी वो सबसे उच्च हैं, श्रेष्ठ हैं। तो वो उनके साथ ये 8 लोगों के साथ में भगवान ने बड़ी विचित्र लीला किया है। कुछ लीलाएं विग्रह रूप में किया है और कुछ लीलाएं विग्रह के बाहर आकर बालक रूप में किया है। एक ही साथ एक ही समय पर विग्रह रूप में भी है, वल्लभाचार्य विट्ठलनाथ जी और गोकुलनाथ जी सब सेवा कर रहे हैं और इधर अष्टछाप के साथ में खेल रहे हैं विग्रह से बाहर आकर, जब चाहे विग्रह जब चाहे बालक, ऐसा अद्भुत लीला उन्होंने किया है। उसमें से सूरदास जी का बहुत ही बड़ा सहयोग है और सूरदास जी अंधे थे लेकिन हर समय जिस भी विग्रह के सामने आते थे उस विग्रह ने क्या श्रृंगार किया है, कौन से रंग का श्रृंगार किया है, उसका पूरा वर्णन करते थे। ये उनकी विशेषता है। ये जो हमारी आंखें जो है ना वो एक यंत्र है एक्चुअली, उसमें क्या अट्रैक्ट हो जाएगा, उसमें क्या कंजंक्टिवाइटिस हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, लेकिन आपके जो अंतरचक्षु है वो कभी डिसीज नहीं होता है, उसको आत्मचक्षु, उससे देखने को हमको सीखना चाहिए, उसी को भक्ति मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या वो संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, इसका शुरुआत क्या है, प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। प्रेम अंजन के द्वारा जो नेत्र अलंकृत हो चुके हैं उसके द्वारा साधु लोग निरंतर हृदय के चक्षु से, हृदय के पटल के अंदर ठाकुर जी का दर्शन करते रहते हैं। ऐसे भक्तों को अगर दृष्टि नहीं भी होगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देख कई लोगों ने परीक्षा किया उनका, जहाँ जहाँ ले गए बताओ तो उन्होंने बताना शुरू किया, पर्दा बंद कर दिया फिर भी बता दिया। वो राधा कुंड में एक बार गए थे भक्त लोग उनको लेकर, जगन्नाथ जी का मंदिर है वहाँ पर राधा कुंड पे, तो वहाँ पर गए और उन्होंने बोला बताओ ठाकुर जी ने क्या पहना है, तो उन सब पहनना शुरू और कविता में बताना शुरू कर दिया, पोएट्री में हाँ और हरे कृष्णा जय श्री कृष्णा, तो वो कविता में बताते बताते ऐसे ऐसे स्विच पे आ गए कि अभी वो गाली बोलना शुरू करने वाले थे, मतलब नंद बाबा ये तो बुढ़ापे में बच्चा पैदा करने वाले व्यक्ति है, ऐसे ऐसे उनका शुरू होने वाला था, तुरंत पर्दे खोल दिए, बस ओके बस अभी आगे मत बढ़ना, अभी कविता जी आगे जा रही है बहुत, तो तुरंत दर्शन खोल दिए, उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन एक उनका गौरव है ये कि एक व्यक्ति, ऐसे कई व्यक्ति वृंदावन में जिनका वर्णन आता है ब्रज के भक्त में किताब में आता है, अंधे भक्त कितने सारे अंधे भक्त हैं ठाकुर के सामने जा रहे हैं और सारा श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। एक ऐसा अंधा भक्त था वो मंदिर में आता था, तो साथी भक्त जो हमारे जैसे पूछे अरे आप क्यों आते हो, आपको क्या लाभ होता है, मतलब जब मंदिर में हम जाते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, हम भगवान को देखते हैं और वो भी हमको देखते हैं, तो क्या हुआ कि मैं नहीं देख पा रहा हूँ, वो तो देख रहे हैं ना मुझे, मैं उसके लिए आता हूँ, ये भाव की बातें हैं अल्टीमेटली। तो सूरदास जी ने यहाँ पर रहकर हमारे लिए, हम जैसे पतित लोगों के लिए अनंत साहित्य दिया है, जैसे मान लीला है मानगढ़ की, उसका वर्णन सूरदास जी ने बहुत सुंदर किया है। ये जो मैंने एक लाइन बताया था ना कि आवत जावत हार गई री, वो उनका ही पद है। उन्होंने ललिता जी कह रहे हैं कितना बार ऊपर नीचे कराओगे मुझे, कृष्ण भगवान भेज रहे हैं उनको, वो भी नीचे भेज रही है, वो ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं, तो बोले आवत जावत मैं थक गई अभी, कितनी बार ऊपर नीचे करवाओगे, इसका वर्णन भी उन्होंने किया है। स्वामी हरिदास जी ने भी उसका वर्णन किया है लीला का। तो इनका जो साहित्य है वो समझने के लिए इतना हमारे जैसे लोगों के लिए आसान नहीं है, लेकिन रस जो है ना ब्रज का वो सब इनके साहित्य में भरा हुआ है, और ऐसे ही दिव्य संत का यहाँ पर निवास हुआ है, यहाँ पर समाधि भी है ना उनकी, हाँ ठीक है रुको जरा, तो आप लोग अभी
यहाँ समाधि है सामने अंदर, और ये तपोस्थली जहाँ 73 वर्ष उन्होंने तपस्या करी,
यस 73 ईयर्स तपस्या किया
सानिध्य में,
नहीं सब सब बता दिया मैंने उनको, तो आप अभी दर्शन कीजिए नीचे, आचमन कीजिए और प्रणाम कीजिए, और इस एक मिनट पर सब करें, दो मिनट रुको जरा, आप उतरिए पहले प्रणाम कीजिए, जूता उतार कर तीन बार जल अपने सर पे छिड़किए और तीन बार उसको प्रश्न कीजिए, और ये बड़ा दिव्य जल है ठाकुर जी के और भक्तों के स्वेद का जल है, आश्रुओं का जल है, प्रार्थना करना उनसे आप हृदय से, और उसके बाद में अंदर जाकर फिर सूरदास जी का मंदिर का दर्शन करना ठाकुर जी का, और फिर बस में बैठकर फिर हम लोग सूर शाम गौशाला में उतरेंगे, या तो चल के जाएंगे और वहाँ पर चल के जाकर उधर शिला का दर्शन करेंगे, फिर आगे चलेंगे। हाँ, जय जय श्री राधे श्याम।